चलते हैं। कल की पॉइंट पहले रिपीट करेंगे। बोलो, बाबा ने वरदान दिया, याद दिलाया, इन शब्दों में याद करो, अभी तो एक ही दिन बीता, इतना जल्दी भूलना नहीं है। जन्म से ही बाबा ने ऐसे बोल रहे, जन्म से ही बाबा ने सफलता का वरदान दे दिया है। इसको बहुत बार कहा। दूसरी बात, हाँ पूरी लाइन बोलो, बहुत अच्छी बात है, ये काम आएगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। भगवान हमारा साथी है, रक्षक है, हम उसकी सुरक्षा में निरंतर हैं। जिनको भगवान सुरक्षा दे रहा हो उन्हें डर की कोई जरूरत नहीं, चिंताओं की भी कोई जरूरत नहीं, भगवान रक्षा कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, दुनिया में कोई सहारा नहीं मिलता, सब ऊपर की ओर देखते हैं और ऊपर वाला आकर हमें इतनी सुंदर बातें कह रहा है। संभालें इसको और आगे चलें। अमृत वेले बाप दुआएं देते हैं, दुआएं लो, ये भी बहुत सुंदर बात, कैसे लेंगे अभी करेंगे। और सुनाओ बहने, मुबारक बहुत दी होली की, क्या क्या दी, क्या भर के? कहावत है ये, टोकरे भर भर के दी, बहुत दे दी, इसमें बाबा का प्यार झलकता है। और भी कुछ? बीती सो बीती, और होली माना होली, ये बात भी बार बार आई है ना, होली एस्ट बाप के, होली होली एस्ट बच्चे, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में बहुत पवित्र, इसको चेक कर लें और बीता सो बीता कर दें। और बोलो हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाओ, बोलो उड़ो और उड़ाओ, आज की मुरली से भी जोड़ लो कुछ, आज सवेरे भी था ना, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो तो क्या मिले, परमात्म अवॉर्ड, सब ये है मुख्य, भगवान की ओर से इनाम मिले, प्राइज मिले। बहुत सुंदर बात थी, इसी पर मुरली थी। कल की मुरली में और भी कुछ था? गुड नाइट भी तो की बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान संपन्न, फॉलो फादर है, हाँ होली का तो बताया, और कुछ था? तीव्र पुरस्कार थी, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लो, एक एक लाइन में ये सब बातें थी, थोड़ी थोड़ी बाबा ने सुनाई। तो मुरली को हम प्रैक्टिकल में अब प्रैक्टिस करेंगे। पहली प्रैक्टिस, सवेरे उठते ही बाबा की दुआएं लेंगे। माताएं अपने बच्चों को कैसे दुआएं देती हैं? बोलो, माताएं बोले, भूल क्यों गई? सिर पे हाथ रख के हैं, हाँ अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं ना, फिर सुखी रहो, आगे बढ़ो, और भी जो प्रसिद्ध है, चिरंजीवी भव, लंबी आयु हो, सब है ना, माताएं खूब देती हैं। पैर भी दबाएंगी छोटी बहू तो उन्हें आशीर्वाद देती है, तो बाबा भी हमें सवेरे से दुआएं देते हैं। सोचना ही कितना आनंदकारी है, कितने भाग्यवान हैं वो सब जिन्हें उठते ही भगवान की दुआएं मिलती हो। हाथ रख देता है बाबा भी सिर पर और आशीर्वाद दे देता है। बच्चे क्या भाव? सफलता मूर्त भाव, विजयी भाव, सदा सुखी भाव, श्रेष्ठ योगी भाव, बाप समान भाव, ये सब दुआएं और आशीर्वाद दे देता है ना। इनमें कुछ बल है या ऐसे ही दे देता है? बहुत बड़ी चीज है ये। अगर साधु संत किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, लोग उनमें भी विश्वास रखते हैं कि कितना अच्छा हुआ, इस गुरु का आशीर्वाद हमें मिल गया, और जिन्हें भगवान की दुआएं मिलती हो उन्हें बहुत गहरा सूक्ष्म नशा हो ही जाना चाहिए। तो इस खुशी को भी बढ़ाएंगे और इस फीलिंग को भी बहुत बढ़ाएंगे। हमें परमात्मा दुआएं मिलती हैं उठते ही लेंगे। रक्षक है हमारा बाबा, है या नहीं? जब संसार में विनाश का खेल चलेगा वो इतना खतरनाक होगा सोचने से भी परे। अभी तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या होगा, इतना ही सोचते हैं बाबा ने कहा ये धरती खाली हो जाएगी। किसके लिए? हमारे लिए, देवताओं के लिए ये धरती खाली करानी है। देखो क्या क्या है इस धरा पर, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा और हमारे क्या होगा? हमारा और हमारे सब जाएंगे। बोले की चली ना बाबा की गलती, शायद कल पर तो जाना है। तो बाबा हमारा रक्षक है, इस फीलिंग को बहुत बढ़ाते चले और इसको इस तरह ही प्रैक्टिस में लाएंगे। सवेरे से शुरू करेंगे, सवेरे और शाम बहुत अच्छी तरह फील करेंगे। बाप दादा हमारे सामने हैं और उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ये। विश्वास बढ़ता चले, बाबा की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। चारों ओर अगर आग भी लगेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, रहेंगे या नहीं? और जब जब ये सब खेल होने लगेगा तो देख देख कर भी आत्माओं में बहुत ताकत आती जाएगी। पड़ोसी के 10 लोग मर गए, अपना एक ही मरा तो रहेगा। चलो बेचारे के उसके तो 10 मर गए, हमारा तो एक ही मरा है, थोड़ी शांति रहेगी। विनाश भी कईयों को मजबूत करेगा, उसका तो सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे पास तो खाने पीने को है। स्वीकार करती चलेंगी आत्माएं कि अब चलने का समय आ गया है, लेकिन हिसाब किताब चुक तो होंगे, उसमें फिस जाएंगे लोग, लेकिन सबको पावन बनाकर बाबा साथ ले जाएगा। अब हम एक मुख्य बात पे चर्चा करना चाहते हैं और आप सभी इसमें हिस्सा लेंगे, इस चिंतन में। सफलता, किसी को सफलता सहज मिलती है और किसी को नहीं। एक माता आई कल मेरे पास, कल बाबा थे परसों, मेरी लड़की बहुत होशियार स्टूडेंट, बचपन से बीटेक कर लिया, बहुत अच्छे नंबर 80%, नौकरी नहीं मिली, MBA कर रही है, बहुत होशियार है। असफलता होती है उसको, क्या करें? ऐसे बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, सब कुछ सुंदर, नौकरी नहीं मिल रही है, असफलता। किसी को सफलता सहज मिलती है, किसी को कठिनाई से। किसी का सफलता इंतजार करती है और किसी को सफलता का इंतजार करना पड़ता है। कारण सोचना है। दूसरा, हमें सफल होना है जीवन के हर क्षेत्र में। पहली सफलता हमारी, सब जानते हैं उत्तर दो, नहीं, पहली सफलता योगी बनने में, दूसरी सफलता माया को जीतने में, तीसरी सफलता सेवाओं के फील्ड में। सेवाओं में भी सफलता की बहुत आवश्यकता होती है। कई कई बहनें बहुत मेहनत करती हैं, स्टूडेंट्स बढ़ते नहीं, कहीं कहीं सहज सफलता होती रहती है। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज। बोलो, सभी साले चिंतन में असफल होने का कारण क्या है? नहीं, निश्चय का इससे नाता नहीं। एक है पूर्व जन्मों के विकर्मों का दबाव। ऐसे बहुत लोग आजकल मिलते हैं, खुशी नहीं रहती। एक माता मेरे पास कल आई थी, खुशी ही नहीं रहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ, सब कुछ तो ठीक है, परिवार अच्छा, पैसा अच्छा, बाबा के ज्ञान में चल रहे, पर खुशी नहीं रहती। क्या कारण है? विकर्मों का दबाव है मन पर, आत्मा पर। तो जिनके विकर्म ज्यादा हैं, उन्हें सफलता मुश्किल प्राप्त होती है। जिसके पुण्य कर्मों का खाता ज्यादा है, सफलता उन्हें बहुत मिलती है। एक बात, आगे चले। दूसरी बात, बोले बोलेंगे आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, ये तो आ गया, बोलो। मैंने बोले माताएं, नहीं, मन मत को छोड़ो। व्यर्थ, जिसके पास व्यर्थ और निगेटिव संकल्प बहुत है, उनकी आत्मिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और सफलता उनसे दूर रहती है। मैंने कितने केसेस में आज तक देखा, बाबा के ज्ञान में आने वाले कुमार कुमारियां, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास सर्विस मिल जाती है। और जो बहुत निगेटिव रहते हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं, जो बुरे संग में रहते हैं, वो होशियार होते भी उनको सफलता नहीं मिलती। एक चीज मैं क्लासेज में सुनाया करता हूँ, यहाँ भी सुनाई है, फिर से सुन लें जो नए भाई बहने आए हैं। एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरे व्यक्ति को उससे ईर्ष्या हो रही है। इस पर विचार करेंगे आप, ईर्ष्या किससे हो रही है? सफलता से। वो व्यक्ति तो पहले भी था ना, दोनों का बड़ा प्यार था, जैसे उसे बहुत सफलता मिलने लगी तो इसको उससे जलन होने लगी। तो व्यक्ति से जलन नहीं, सफलता से जलन हो रही है। तो ऐसे में सफलता उसके पास नहीं आएगी। जो दूसरों की सफलताओं को देखकर परेशान होते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, सफलता उनके पास नहीं आती है। जिसे सफल होना है, वो दूसरों की सफलताओं को देखकर उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, दुआएं दें। आजकल मनोवैज्ञानिक लोग जो थोड़े काम कर रहे हैं ना अंतर्मन की शक्तियों पर, वो इस बात पे भी बहुत काम करते हैं कि थैंक्स दो, भगवान को थैंक्स दो, जो तुम्हें मिला उसके लिए थैंक्स दो, थोड़ा मिला उसके लिए थैंक्स दो, थोड़ी सफलता मिली थैंक्स दो, वाह प्रभु तुमने बहुत सफलता दिलाई, जल्दी ही डबल मिल जाएगी, थोड़ा सा भी धन मिला वाह प्रभु तुमने हमें सब कुछ दिया और मिलने लगेगा। और जो मांगते हैं ये भगवान पैसा दो, वो कहता है मेरे पास पैसा बनाने की फैक्ट्री नहीं है ऊपर, मैं कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे लिए पैसे ऊपर से। तो हम सफलता को वेलकम करें, दूसरों की सफलता को, तो सफलता हमारे द्वार पर भी आती रहेगी। जो मनुष्य निगेटिव है, इस पर बहुत ध्यान देना है सबको, जो मनुष्य निगेटिव है सफलता उससे दूर रहती है। अब हम ब्राह्मण जीवन में आ जाएं अपने पर, हमें सफलता प्राप्त करनी है योग में, माया को जीतने में, सेवाओं में। तीन फील्ड ले लें, जीवन के हर फील्ड में हर एक व्यक्ति को सफलता की जरूरत है। हम कहीं जा भी रहे हैं किसी से मिलने, मिले ठीक वार्तालाप हुई, वो सफलता हो गई ना हमारी। हम किसी को राखी बांधने जा रहे हैं, राखी का त्योहार है, 10 लोगों को राखी बांधी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ, मिलना अच्छा हुआ, ये भी हमारी सफलता है। ये सबसे छोटी सफलताएं भी हमें रोज देखने को मिलती है। एक बच्चा परीक्षा दे रहा है, पेपर बहुत अच्छा हो गया, ये उसकी सफलता है। मनचाहा परिणाम आ गया, ये उसकी सफलता है। हमें योग के सब्जेक्ट में सफलता चाहिए तो क्या क्या करेंगे? दृढ़ता, एकाग्रता को बढ़ाएंगे, एक सुंदर लक्ष्य बनाएंगे, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त रखेंगे, साथ में प्रैक्टिस बहुत करेंगे। योग की सफलता जो सबसे बड़ी सफलता है हमारे जीवन की, हम सब जानते हैं जो योग में सफल है वो हर जगह सफल है। जिसका योग सरल है उसका जीवन सरल है, सहज सफलता उसके द्वार पर आती है। योग सरल है, हर कार्य जो सारा दिन काम होते हैं वो भी सरलता से हो जाते हैं। योग के सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है, और अगर किसी की एकाग्रता योग में अच्छी ना होती हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? माताएं बताएंगी, हैं? बहुत अभ्यास किस चीज का? हाँ बोलो, कुछ कुछ बोलो, ठीक बोल रही है आप, बोलो। कुछ अभ्यास करने चाहिए। योग हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, मैं सिंपल भाषा में बोलूं, यदि हम उसके पीछे लग जाएं तो वो हमारे पीछे पीछे आएगा। पीछे लगना माना कुछ प्रैक्टिस चलती रहे। मैं लोगों से प्रैक्टिस कराता हूँ सिंपल सिंपल, एक ही उदाहरण देता हूँ। कोई कुमार मेरे पास आया, मेरा मन बहुत भटकता है, योग बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने उसे और कुछ कुछ भी पूछा, देखा कि इसकी एकाग्रता तो है नहीं, इसका योग लगता ही नहीं। तो मैंने एक दिन के लिए उसे काम दिया कि आज सारे दिन में एक काम करना है, पूरा अपना पूरा समय आज आपको प्रैक्टिस के लिए दे देना, और कुछ नहीं करना है। शांति वन में आए हैं, और कुछ तो काम नहीं, क्लास में बैठना है, खाना पीना है। हर घंटे में 10 बार मैं आत्मा हूँ प्रकृति सिंहासन पर, चमकती हुई ज्योति हूँ, 2-4 संकल्प बता दिए, इसका अभ्यास करना। ज्यादा तो उनसे होता नहीं था, और शाम को मेरे पास आना, तो कम से कम सारे दिन में 108 बार अभ्यास कर लेना। करके आते हैं लोग, मैं 108 इसलिए कहता हूँ, 50 तो करेंगे, 108 होता नहीं लोगों से, शाम तक करके आ जाते हैं, और उनका चेहरा ही बताता है, चेहरे की चमक, कि आज बहुत अच्छा हो गया है। मैं पूछता हूँ योग लगता है क्या? आपको लग गया, बस लग गया। कुछ प्रैक्टिस, कुछ ऐसे लोग होते हैं, माताएं कुछ ऐसी आती हैं बहुत उलझी हुई, जिनसे कुछ नहीं होता, उन्हें मैं कहता हूँ जरा बैठ के लिखो 108 बार, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान, लिखने से उनमें जागृति आ जाती है। ये छोटी विधि है, हम जानते हैं ये हमारी विधि नहीं है, हमारी विधि है उस चीज का स्वरूप बन जाना, उसके नशे में आ जाना। पर और नशे इतने चढ़े हुए हैं कि ये नशे चढ़ते नहीं है, तो हम उनसे लिखवा देते हैं। लिखने से धीरे धीरे जागृति होने लगती है, आत्मा स्वीकार करने लगती है, सचमुच मैं एक महान आत्मा हूँ। 108 बार लिखेंगे तो 10 बार तो ख्याल आएगा ना, मैं हूँ, ये होता है। ऐसी कोई ना कोई प्रैक्टिस योग के सब्जेक्ट में सफल होने के लिए रखनी चाहिए। एक दिन शरीरीपन की प्रैक्टिस ले लें, दूसरे दिन आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस ले लें, तीसरे दिन किसी स्वमान की प्रैक्टिस ले लें, चौथे दिन एक बहुत सरल प्रैक्टिस, बाबा मेरे साथ है, केवल नशा, नशा होता रहे, बाबा मेरे साथ है। पांचवे दिन प्रैक्टिस ले लें, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, देखने लगे बाबा खड़े हैं सब पास, हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। ये कुछ ना कुछ धुन हमें लगानी पड़ेगी। माया पर सफलता, माया से हमारा युद्ध है, इस युद्ध में सफलता। अब सोच के उत्तर देंगे कैसे, माया के युद्ध में सफलता हो हमारी, माया युद्ध में हमें हरा न सके। आज भी माया की बहुत बात थी ना सवेरे की मुरली में, आज तो था कि बच्चे माया का आह्वान करते हैं, मैं क्या करूं, माया कहती है बाबा को मुझे बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। माया को बुलाए तो माया सम्मान तो रखेगी ना, बुला रहे हैं, मैं न जाऊं तो इंसल्ट हो जाएगी, आ जाती है। तो माया को जीतना है, इस सब्जेक्ट में हमें सफल होना है। बोलो गुहे बातें, हमने इस माया को कल्प कल्प जीता है, ये नशा और निश्चय हो जाए। दूसरी बात बताओ, मैंने बोलेंगी पीछे वाले जो केवल श्रोता है वो बोलो जरा, श्रोता भी है कोई कोई, श्रोता भी है, बोलो। माया की को हमें जीतना है, हमारी सफलता होती चले, चाहे क्रोध पर, चाहे इच्छाओं पर, मोह पर, आलस पर, ईर्ष्या द्वेष पर, बोलो बोलना है, हैं? माया को चैलेंज कर दे, ये भी अच्छी बात है, तो माया की पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे जिसको हम चैलेंज करते हैं उसकी पावर बढ़ा देते हैं। बोलो और बोलो, माया कागज का शेर है, ये याद रखे, पर है शेर ही, ऐसा कागज का ही है, शेर अवश्य है। और बोलो भाई, बोले पीछे वाले, माया के युद्ध में हमारी विजय मरी हुई चींटी है, कमजोर संकल्पों का त्याग। ये समझ लें कि माया और कुछ नहीं, हमारे कमजोर संकल्प है केवल। और बोलो, माया को कौन जीत सकते हैं, जिसके साथ सर्वशक्तिवान हो परम सद्गुरु, वो माया को जीतेंगे। माया को वो जीतेंगे जिन्हें माया का संपूर्ण ज्ञान हो। याद है बात बाबा की, नॉलेजफुल में माया के आने की नॉलेज भी हो, माया किस किस तरह वार करती है, वो कहाँ कहाँ से आ जाती है, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप क्या हैं, उसका भी पता हो, है? बहुत सब प्यारी माया आजकल ज्यादा। अब माताओं को क्या पता आपने क्या कह दिया, ये जो मोबाइल है ना माताओं, इनमें कुछ कुछ गड़बड़ ज्यादा होती है, उससे कईयों को माया आती है। और सबसे भी ज्यादा फेसबुक, मुझे भी, मैंने भी देखा नहीं फेसबुक क्या होती आज तक, लेकिन अभी व्हाट्सएप चल दिया, फेसबुक डिली हो गई, कोई और भी तो निकला था पीछे, वो भी मुझे बताते, वो सब ही है। तो चीजें तो बहुत अच्छी हैं विज्ञान की, हम उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। देखो मोबाइल बात करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पहले कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन कोई इसमें लगा ही रहे, गेम खेलते रहे बच्चे और कुछ कुछ, तो वो टाइम वेस्ट करने वाला है। तो माया पर भी हमें जीत पानी है, और माया को वही जीत सकते हैं जिनका अपने व्यर्थ पर पूरा ध्यान हो। ऐसा ना हो सारा दिन व्यर्थ चलते रहें और हमें उसका पता भी न चले। एक ऐसी भी आत्मा मेरे पास आई जो खुद अपने पर चिंतन से बहुत दुखी थी। प्रश्न ही आया, मुझे पता है मैं प्रचिंतन करना बाबा की मनाही है, प्रचिंतन पतन की जड़ है, पर मेरा प्रचिंतन रुकता ही नहीं और मैं इससे बहुत दुखी हो गई हूँ, क्या करें ऐसे में। ज्ञान है मनुष्य को, कहा मैं दूसरों के बारे में ही सोचती हूँ, जानती हूँ कि जो मैं सोच रही ये बेकार है सब, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, फिर भी सोचती रहती हूँ, क्या करेंगे ऐसे में, बोलो। लक्ष्य देकर चलें स्वयं को, जहाँ लक्ष्य के बिना मनुष्य का जीवन चल रहा है वहाँ अनेक तरह के व्यर्थ जीवन में हैं। जिसके पास महान लक्ष्य हो व्यर्थ के लिए उसके पास समय होता ही नहीं। हमारे पास स्लोगन है ना, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। लक्ष्य के बिना जीवन जो जीते हैं माया पर उनकी विजय नहीं होती। लक्ष्य जिसके पीछे हम लगे हों, जिसको प्राप्त करने में हम जुटे हों, सेवा भी हम करते हैं। देखो हमारे यहाँ पहले बहुत मेले होते थे ना, आध्यात्मिक मेले अलग अलग नाम से, तो मेला तैयार करना एक हफ्ते में पूरी टीम लग जाती थी ना, रात को बहुत काम करते थे क्योंकि बड़ा काम होता था, उसमें बहुत सारा काम होता था। हमें याद है दिल्ली में जब पहला मेला हुआ, पहला मेला, उसमें कोई डिस्टरबेंस हो गया, रशिया का जो प्रेसिडेंट, उन दिनों प्रेसिडेंट नहीं होते थे, जनरल सेक्रेटरी वही प्रेसिडेंट, वो भारत में आने वाला, उसकी डेट अनाउंस हो गई और सरकार ने अनाउंस कर दिया कि उसका स्वागत रामलीला मैदान में होगा दिल्ली में, और रामलीला मैदान में हमारा मेला। ऐलान आ गया खाली कर दो, ऑर्डर आ गए। और देखो दादी ने शायद रात योग करा दिया और कहा, किसी ने बताया, बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने संपर्क में है ना, कि इंदिरा गांधी कल सवेरे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सब कांग्रेस के, नहीं राष्ट्रपति नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष या कुछ थे, कि उन्हें भेजेगी सवेरे ये देखने के लिए कि इनका मेला कितना लगा है। तो आप रात रात में मेला खड़ा कर दो बहुत ज्यादा। अब देखो आप, एक तरफ योग चालू करा दिया, दूसरी तरफ पूरी जो लंबी चौड़ी टीम थी ना, हम लोग भी मधुबन से बहुत सारे गए हुए थे, हमारा अपना एक अलग स्टॉल था मधुबन की ओर से, तो सब लोग सारी रात लग गए। और जब सवेरे शंकर दयाल जी आए तो उन्होंने देखा ये तो सब तैयार है, इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी, बहुत तैयार है, वो बाबा तो ऊपर से काम करते है ना, उसने कहा अच्छा छोड़ दो, दूसरी जगह करते हैं। फिर चाहे लाल किले का जो आगे का मैदान है वहाँ किया था। तो लक्ष्य जब होता है सुस्ती भी खत्म, अलबेलापन भी खत्म, व्यर्थ को कोई स्थान ही नहीं मिलता। हम अपने लक्ष्य को बहुत पावरफुल करें। अनेक सेवाओं में सफलता, जो हमारा एक बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है, इससे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सोचना है सभी को इस थोड़ी सी पावरफुल बातें हम निकाले, सेवाओं में सफलता हो। बाबा पहले बहुत कहते थे 9 लाख तक पहुंचाओ, अब तो उससे बहुत ज्यादा हो गया, हो सकता है एक आठ साल में 18 लाख तक ही पहुंच जाए, एक आठ साल में, और अगले 5 साल में करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि जब बढ़ती है संख्या तो तेजी से बढ़ती है, जाने वाले जाते रहेंगे लेकिन आने वाले उससे 4 गुना आएंगे। ये सब खेल शुरू से चलता आया है और चलता रहेगा। सेवाओं में सफलता, आप एक जगह भाषण करने गए हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, भाषण करने वाले को भाषण करने में सफलता हो और जिनके लिए भाषण किया जा रहा है उनको भी वैसा कुछ मिल जाए जिसे हम सफलता कहेंगे, दोनों के लिए क्या जरूरी है? भाषण करने वाले को सफलता पूर्वक भाषण करे वो, कई चीजें आप में से कई करते होंगे भाषण, पहले तो बाबा से वरदान लेकर ही घर से जाए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिनको भी कहीं कार्य करना है सेवा का, वो ऐसे शुरू करेंगे और फिर बाबा को भी साथ लेकर जाए, उसका वरदान भी साथ और बाबा का भी आह्वान कर ले। दूसरी बात, यहाँ सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा आत्मविश्वास। बोलने वाले में यदि आत्मविश्वास है तो सुनने वाले बहुत अच्छा सब कुछ लेकर जाएंगे, और बोलने वाले में आत्मविश्वास नहीं है, बोलने वाली बहन सोच रही है सामने सारे प्रोफेसर बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो घबरा रही है, तो क्या होगा? सफलता नहीं होगी। उसे पता होना चाहिए कि जो सामने प्रोफेसर बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं वो कौन है, वो तो कुछ भी नहीं जानते, वो प्रोफेसर फिजिक्स का हो सकता है, आत्मा का थोड़ा ही। आत्मा का ज्ञान जो आप उन्हें देंगे वो वाह वाह करेंगे, वाह इतनी गहरी बात बता दी। आप बताएंगे हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, यहाँ रहती हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, वो कहेंगे वाह बहन जी के पास बहुत ज्ञान है, कहेंगे या नहीं? क्योंकि उनको पता ही नहीं। और बहन जी इधर सोच रही प्रोफेसर बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कॉन्फिडेंस, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं मेरे पास आते हैं ना ऐसे, मैं बहनों कहता हूँ तो कुछ भी नहीं सुनाना, आत्मा का ज्ञान दे देना पहला लेसन, और देखना कितनी वाह वाह होती है, और जब लोग वाह वाह करते हैं उसे लगता है मैं भी कुछ हूँ, कर सकती हूँ बहुत अच्छा काम। हमारे पास जो ज्ञान है उसकी तो ABCD भी संसार के लोग नहीं जानते, हमें आत्मविश्वास रखना है बहुत ज्यादा। देखो कल बाबा से मिलने के लिए सन्यासी भी आए हुए थे ना, कुछ आजकल सन्यासी भी आने लगे हैं, एक महामंडलेश्वर था मेरे को भी मिलाया, मैं ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ गया था, कहा हमारे महामंडलेश्वर आए इनको मिल लो, कार से उतारा बेचारे को, वही बैठा गया मिलने लगे, चार और दूसरे सन्यासी, उसने कहा हमारों से भी मिलो, 6 हो गए थे वो, 6 को बैठे, जो 4 दूसरे थे चारों PhD किए हुए, और ये महामंडलेश्वर भी बहुत बहुत खुश दिल, हल्का सरल, एक होते वो लोग अहंकारी, ये बिल्कुल हल्का फुल्का सरल चित। मैंने बात की 10 मिनट हम मिले होंगे, उन्होंने कहा कल कैसे बाबा आएगा क्या होगा वो सभी ने सुना दो, तो मैंने वो सब बातें सुना दी, और उन्होंने कहा अपने तीसरे नेत्र से जरा देखना, यहाँ सबको देखो, देखो 25,000 लोग एक साथ है, क्या है सबके चेहरों पर, कई ऐसे चेहरे आपने देखे हैं, आपके पास भी अच्छे अच्छे संगठन होते होंगे, अंतर देखना सब कुछ, यहाँ देखना कैसे भगवान, क्लियर बोला मैंने, उनको छुपाने कुछ बात नहीं, भगवान आएगा हम सबसे मिलेगा,
कैसे करना है। मैंने कहा क्लास में भी आ जाना, क्लास में भी आ गए थे टाइम पे। तो मैं देख रहा था वो पीएचडी किए हुए तो हैं, लेकिन यहाँ आकर कैसा लगता है उन्हें, उन्हें ऐसा लगता है अनेक पीएचडी किए हुए को कि हम कुछ भी नहीं जानते। पीछे हमारी इस बार की कॉन्फ्रेंस यंत्रोर में हुई, 300 लोग पीएचडी वाले थे उसमें, लेकिन उन्हें लगता था कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है जो यहाँ है। तो हमें बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अपने ज्ञान में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस समझते ना आते हैं, विश्वास एक होता है निश्चय बाबा में, वो अलग, अपने में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, अपनी सफलता में विश्वास। हमारे पास बहुत शक्तियां भी हैं, इस बात में विश्वास रखने की सभी को बहुत जरूरत है। सभी माताएं भी जो यहाँ बैठी भाई, बहुत अच्छी तरह से चिंतन करें, हम जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं। एक शक्तिशाली है सर्वशक्तिवान और दूसरा नंबर हमारा। इसमें संपूर्ण विश्वास हो जाए, अपनी शक्तियों में विश्वास, ये सफलता का आधार है। इसी को बाबा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे पास तो इसके कई हजार अनुभव होंगे लोगों के, इन दो संकल्पों के, जिसमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है हर फील्ड में। इंटरव्यू हो, एग्जामिनेशन हो, कोई कार्य हो, कहीं सेवाएं होनी हो, कहीं किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा विघ्न आ गए हो उसके सामने, ये दो संकल्प कैसे सफलता की ओर ले चलते हैं, बहुत अच्छे अनुभव सबको करने हैं। मुख्य रूप से अपनी शक्तियों में विश्वास। मैं बाबा का एक महावाक्य याद दिलाता हूँ सदा, अपने को बहुत याद दिलाता हूँ, तुम्हारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। बाबा का इसी सुंदर महावाक्य, इसे सब याद करेंगे तो सेवाओं के फील्ड में भी बाबा को साथ लेकर बड़े आत्मविश्वास के साथ हम सेवा के फील्ड में रहेंगे, सफलता होगी। लेकिन हमें एक चीज और जाननी चाहिए, सेवाओं के फील्ड में सफलता का बीज है, एक धारणा बताओ, प्योरिटी। जिसके पास जितनी प्योरिटी सेवाओं के फील्ड में, उसे उतनी ही ज्यादा सफलता। दूसरा, त्याग, तपस्या और फिर है सेवा। जितना त्याग का बल होगा उतनी ही तपस्या होगी, जितनी तपस्या होगी उतनी सहज सेवाओं में सफलता होगी। समय पूरा हो रहा है, एक बहन का अनुभव सुना देता हूँ। मेरे पास आ रही है 6 मास से, सेंटर में कोई भी नहीं आता है, अकेली बहन रहती है, छोटी आयु की है। मैंने कहा अरे भाई अकेला, बड़ा मकान 5 रूम का, अकेला बहनों को रहना कितना भारी काम है। मैंने उसको सिखाया कन्याओं को कैसे पालना देनी है, रखो कुछ प्रैक्टिस कराई उससे। तो कल ही मुझे मिली, कहा सवेरे क्लास में 15 भाई आने लगे, ये सब बात 3-4 मास की है, माताएं भी आने लगी। तो मैंने कहा माताओं को अपना साथी बनाओ, कम से कम आपके साथ आके सोए, कुछ यदि सेवा करें उनका भी भाग्य बने, तो सफलता होने लगी उसको। अब उसके चेहरे पे रौनक थी, नहीं तो उदासीनता थी। अकेले सारा दिन रहना, कोई नहीं आ रहा, कोई सेवा नहीं, कैसा लगता है। तो सफलता के लिए मेहनत भी करनी है, लेकिन प्योरिटी, आत्मविश्वास, व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से मुक्ति। तो सभी चिंतन करेंगे कल की बाबा की मुरली पर, और रोज सवेरे दुआएं लेंगे, बाबा की हजार भुजाओं की छत्र छाया सिर पर और तिलक लगाकर वरदान कौन सा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इसी से हम योग करेंगे, बाबा की दुआएं भी और हजार भुजाओं की छत्र छाया भी, उसमें हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। बहुत बढ़ा देंगे इसे, पूरी तरह सुरक्षित हैं। भगवान जिनकी रक्षा करे, मानने वाले क्या कर सकेंगे उनका, बचाने वाला स्वयं भगवान, मानने वाले सब असफल। ऐसा नशा रहे तो विनाश काल में बेफिकर बादशाह बनकर संसार में विचरण करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। डीके गणेश भाई हूँ, अमृतसर से हूँ। सुशील भाई लोकेट में छोटे भाई हैं और बाबा तो परिस्थिति अनुसार अभी जो भयंकर परिस्थितियां आने वाली हैं, शायद उसको सामना करने के लिए ऐसा कुछ दिखा कर रहा है। अभी दो दिन पहले 13 तारीख को इसी महीने की कपड़े का काम है मेरा सियाराम कंपनी में, एज ए सेल मैनेजर पंजाब संभालता हूँ। तो उसमें टूरिंग का जॉब रहता है ज्यादा करके, और रात को मैं होशियारपुर है पंजाब में, वहां से टूरिंग करके आ रहा था। 10:30 बजे का टाइम था, बस अड्डे पे उतरा, वहां से ऑटो किया अपने घर के लिए, और घर से फिर रास्ते में एक रिक्शा करना पड़ता है, तो ऑटो से उतर के रिक्शा मैंने किया। रिक्शे पे उतरा तो उससे आगे कॉलोनी में गलियां पड़ती है, तो रिक्शे वाला कहता आगे मैं कॉलोनी में नहीं जा सकता, आगे अंधेरे में तो ऐसे लोग डरते हैं थोड़े 10 बजे के बाद, तो वहीं उतार दिया सर। और मैं यहाँ से लेके जितनी दूर पे डोर है इतनी दूरी तक पैदल गया, कॉलोनी है, रेजिडेंस प्लेस है सारा, तो वहां गुजरा था तो तीन सामने से ना मोटरसाइकिल पे सवार लड़के आए, और उसने आगे वाले जो चलाने वाला था उसने शॉल सीधे पेट रखी थी, वो सीधे आ रहे हैं और मैं पीछे डाला हुआ है पिट्ठू सा टेम्पल वाला, और मैं इस साइड से चल रहा हूँ, और 20 फुट की गली है, तो वो आते आते ना मेरे जब सामना आया, पास में आया, तो ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा हो गया वो, और मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि एक बार ऑलरेडी मेरे साथ ऐसे हो चुका था। तो वो जैसे ऐसे आने लगा तो जैसे बाबा ने मेरे को बोला कि थोड़ा ऐसे हो गए, तो मैं थोड़ा सा ना इधर को फेस कर गया, तो वो सामने खड़ा करके थोड़ा सा स्पीड लो करके तो मेरे को बोलता भाई साहब ये रास्ता किधर को जाता है, मैं कभी ये बाहर चले जाए मीठा रोड आ जाएगा मेन। इतनी बात हुई, वो अपने चला गया, मैं अपना चला गया, 1/2 किलोमीटर गया हूँगा। अब संकल्प मेरे भी चल रहे हैं कि ये गलत आदमी थे, तो जैसे मोड़ पे टर्न किया तो मैंने क्या किया, इस हाथ से ईंट का रोड़ा पड़ा हुआ था वो उठा के मैंने कट के पकड़ लिया, ये सोच के कि अब दोबारा आगे आएंगे या पीछे से आएंगे तो मार दूंगा इसको, तो मार दूंगा मैं। और जैसे मैं घर की पास में, जैसे यहाँ से पांडव भवन है नीचे, तो इतनी दूरी का डिस्टेंस रह गया मेरे घर से, गली में एंटर किया, और गली में जैसे मैंने एंटर किया तो 2-4 मकान छोड़ के मैंने पत्थर जो पकड़ा था फेंक दिया। मैं कहा अब कौन सा आने वाला है, अब तो मैं अपनी कॉलोनी में आ गया हूँ। अब जैसे ही मैंने अभी पत्थर फेंका ही है तो वो बाइक पीछे से निकली और ऐसे मेरे आगे जाके ये जहाँ ये भाई साहब रहने वाले बच्चे हैं इतनी दूरी पे जाके टर्न करती थी वो गली। तो हालांकि वो पीछे से मेरे को पकड़ते तो शायद वो मार भी देते, लेकिन वो सामने वहां तक गए और वहां से ना टर्न करके पीछे को आगे वापस, ताकि हम मारने या करने के बाद बाहर को निकल सके, भाग सके। और मेरे को जैसे बाबा ने बचाना था, अब मैं इधर से जा रहा हूँ और मेरे को डाउट हो गया कि ये वही आए हैं दोबारा से। अब मैं ये सोच रहा हूँ खाली प्लाट पड़े थे वहां पे, मैं कभी छलांग मार दूंगा और जोर से चलाऊंगा कि मुझे बचा लो, जो मेरे अंदर सोच क्रिएट हुई। और दूसरा ये हो रहा है कि साथ में ना बहुत पावर आ रही है, कोई बात नहीं आएगा ना तो आज देखा जाएगा। तो अभी जैसे वो सामने आए तो इतनी दूरी पर सामने आके ना खड़े हो गए और मेरे को फिर वही शब्द, ये रास्ता कहाँ को जाता है, और मैं समझ तो गया हूँ। तो इतने में अभी वो पूछ रहा है एक, और दूसरा जो बीच वाला था वो नीचे उतरा, ऐसे करके उसने हाथ रखा है अपना ये वाला हाथ, और नीचे हाथ में सीधे मेरी यहाँ पे पिस्टल रख के मेरे को बोलता है निकाल दे जो कुछ तेरे पास है। अब आप सोचिए कि आपके सामने पिस्टल है आपके ऊपर और दूसरे हाथ में दूसरे बंदे के हाथ में कृपान है लंबी जोड़ी, पंजाब तो इन चीजों के लिए वैसे मशहूर है, और तीसरा बाइक के ऊपर स्टार्ट करके खड़ा है। अब उस स्थिति में पता नहीं जैसे बाबा ने मेरे अंदर प्रवेश किया, मुझे तो अभी तक भी वो चीज की समझ नहीं आ रही, हाथ अभी थोड़ा थोड़ा धड़क रहा है, नॉर्मली मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो उसने क्या किया, उसने पिस्टल जैसे ही ऐसे रखी तो जैसे बाबा ने प्रवेश किया और ऐसे जिस पिस्टल से उसने मेरे को ऐसे किया हुआ था, ये वाले हाथ से ना मैंने उसका पिस्टल उसकी तरफ और हाथ पूरा कसके पकड़ लिया। और आप सोचिए मेरा फिजिकल भी कोई इतना मैं पावरफुल तो नहीं था, और वो मेरे से काफी पावरफुल था जैसे शैलेंद्र भाई हैं। तो मैंने उसको ऐसे गले से पकड़ा इस हाथ से और इतना ऊपर उठा दिया, और उसके बाद ऊपर उठाने के बाद ऐसे ना कस के मारा उसको फर्श वाली गली से। अब आप सोचिए वो कहां से पावर आई और कैसे ये सब हो गया, मुझे तो अभी तक भी वो समझ नहीं आ रहा। चलो हो गया, वो नीचे या पटक दिया उसको, तो जो कृपान वाला खड़ा था अब उसको भी जैसे कि बाबा ने बोला तो वही रुक जाने, तो तेरा भी यही हैसर होने वाला है। तो वो वही खड़ा है और मैं ये सब देख तो रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा हिला जरूर हुआ हूँ, भले बाबा मेरी हेल्प कर रहा है। तो वो जैसे मैंने उसको पटका तो वो पटकने वाला क्या बोल रहा है, अब उल्लू के पट्टे अब तो आ जाए, अब तो कृपान मार दे इसके सिर के ऊपर, वो उसको बोल रहा है अपने साथी को। अब कृपान वाला इतनी बात सुनकर ना फिर आया आगे को, आगे आके तो सीधे ने जैसे इतनी दूर पे आया तो मैंने क्या हुआ, एक वो जो बैग की दो तरफ की चेन होती है तो एक तरफ की तो टूट गई मेरे उसके साथ झगड़ा करते करते, और एक इधर वाली बची थी जैसे बाबा ने मेरे को बोला कि अब बैग को फेंक दे, ये बैग के लिए आए हैं, ऐसे मेरे को अंदर से फीलिंग आई। तो मैंने क्या किया ऐसे ना थोड़ा सा उसको गले से पकड़ा था, मैं थोड़ा सा हल्के से छोड़ा उसको और ऐसे झटका मारा, और एक जो मेरा इधर वाला था ये भी खुल के ना बैग मेरा नीचे गिर गया, और ये मेरा टैब था ये ऐसे ही पड़ा था, इसके बीच दूसरा मोबाइल ऐसे पड़ा था, एटीएम मेरा यहाँ था उसी दिन पैसे भी जमा कराए थे, और पीछे मेरे पर्स जेब से भरा हुआ था, चारों चीजों से फुल था। और बैग में खाली क्या था, उसमें कपड़े के सैंपल जैसे सियाराम कंपनी में शूटिंग शॉपिंग होते हैं या ज्यादा से ज्यादा चेक थे 2-4 पार्टी के, ये था। तो जैसे मैंने बैग फेंका अब उसके बाद वो बैग तक आते आते कृपान वाला रुक गया वहां पे आके, उसने देखा बैग अपना पर्पज तो बैग को लेना ही था, वो वहां रुक गया। और मेरे को जैसे बाबा ने बोला कि अब इसको उठा और इसको पटक दे पीछे, तो मैंने नीचे जैसे उसको बिठाया हुआ था मैंने ऐसे करके पकड़ा उसको दोनों बाजुओं से और अपनी तरफ ना पूरी कस के खींचा, और कस के खींच के ना फिर पूरे जोर से जिस तरह धक्का मार सकता था उतनी जोर से मैंने उसको पीछे को धक्का मारा। अब वो भी जाके बैग के पास गिरा। अब वो जो कृपान वाला वो उसको क्या बोल रहा है, कहता भाई साहब हाँ अपना तो बैग ही चाहिए ना, उठा बैग और चल फटाफट से भाग ले। अब वो दोनों भाग रहे हैं और मैं पूरी जोर से तब चिल्ला भी रहा हूँ, एडवोकेट का घर था वहां, तो एडवोकेट पंडियाल नाम था उसका, मैंने कल्याण साहब मैं मेरे को पिस्टल से मार रहे हैं, मेरे को घेरा हुआ, मैं कहा उठो सारे ऐसे करके भी जा रहा हूँ। और वो जैसे ये सब हो रहा है तो जब मैंने उसको धक्का मार दिया और उन्होंने बैग उठाया तो मैं अपनी तरफ भाग लिया। मैं कह दिया अब इनके जंगल से तो बच गया हूँ, फिर कैसे भी उसके बाबा ने दिया जो भी हुआ, तो मैं भाग लिया अपनी तरफ 50 फुट रुपये भागा तो लोग निकल आए घरों से। अब थोड़ा सा मेरे को हो गया नहीं कॉलोनी वाले कुछ निकले हैं बाहर। और उसके बाद मैं वापस आया देखा तो वो जितने दूर भाई साहब अभी निकल गए हैं तो इतनी दूर पे वो निकल गए। अब सारे पूछ रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ, कहता भाई साहब आप तो रोज ही एडवाइज करते हैं जी रात को कोई ऐसी वैसी बात हो तो घर का कुंडी खड़का दिया करो। मैं तो कुंडी गया, मैं तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मैं कह एक भी नहीं आया, पर मैं कह शुक्र ये करो कि भगवान ही मेरे साथ आ गया। तो बस वो 2:30 बजे तक उस दिन मेरी जो हार्ट है पहली बार मैंने महसूस किया कि हार्ट के पेशेंट कैसे होते हैं, तो ऐसे ऐसे कर रहा था, बट अभी नॉर्मली मैं देखो ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। ओम शांति।